ओम शांति। आज के भट्टी के पहले सत्र में आप और हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि हमारे मध्य में भ्राता सूरज भाई जी उपस्थित थे। आपका परिचय देना वो तो सूरज का परिचय देना जैसा है, सूर्य के आगे दीपक दिखाने जैसा है। आप अपने बाल्यकाल से ही बाबा के यज्ञ में आए, साकार बाबा के समय से ही आप आ गए और वर्तमान समय में पांडव भवन, शांतिवन, ज्ञान सरोवर सभी किचन डिपार्टमेंट के आप इंचार्ज हैं और देश और विदेश में काफी देशों में जाकर के बाबा का ज्ञान का प्रचार प्रसार और अनेक बाबा के बच्चों को प्रेरणादायी आपका जीवन है। और टीवी में जैसे समस्या और समाधान ऐसे कई प्रकार के प्रोग्राम्स आपके आते रहते हैं और रोज आज की प्रेरणा का प्रोग्राम 5 मिनट का आपका जो प्रवचन आता है वो ईमेल में मेरे पास तो रोज आता है और व्हाट्सएप में सारे भारत में हरेक के पास पहुंचता ही है। आप सभी सुनते भी होंगे, रोज का 5 मिनट का होता है और सभी सुनते हैं, सभी को बहुत अच्छा लगता है। तो आपको आज यहाँ पर पाकर के हम बहुत बहुत खुश हैं सभी का। आप सभी हमारे सूरज भाई का अभिनंदन करेंगे एक ताली से।
ओम शांति। अच्छा पहला ही वो है सेशन अभी। अच्छा तो मुझे और जरा पावरफुल कराना पड़ेगा फिर तो। मैं सोचा हो गए एक दो दिन। श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए सभी को रोज कुछ समय एकांत का निकालना है। निकालना चाहिए नहीं, निकालना है। उसमें अपने से बातें करनी है, अपनी उन्नति के लिए सोचना है। विशेष रूप से मैं आपको 2-4 संकल्प देता हूं क्योंकि समय तेजी से आगे बढ़ रहा है। खराब आ रहा है या अच्छा? दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है। विनाश से पहले सभी आत्माओं को कर्मों का हिसाब पूर्ण करना होगा। ऐसे ही नहीं विनाश होगा, यही धर्मराजपुरी होगी। एक नई रोशनी मुझे धर्मराजपुरी की 15 दिन में मिली है। पहले ही बता देता हूं, भूल न जाए लहर में कहीं मैं गया। एक बहन जिसने मकान बनाया उसका अपने मकान से बहुत मोह हो जाता है। बहुत अच्छा मकान बनाने से कैंसर हो गया, शरीर छूट गया। बाबा के पास गई, बाबा को कहा मुझे आपने क्यों बुला लिया, मुझे तो उस मकान में रहना था। बाबा ने कहा वापिस जाओ। किसी के तन में आ गई और बताया कि बाबा ने तो मुझे भेज दिया है, बाकी तो बाद में बताया मैंने क्या कहा था। और कहा तुम्हें 13 साल भटकना पड़ेगा। और भी कुछ बातें थी, 4-5 और भटकती आत्माओं ने उसको अपने ग्रुप में मिला लिया। आप शायद इसकी गंभीरता को समझते हैं या नहीं। अब उसके लिए ये 13 साल धर्मराज की सजा के साल हैं। आत्मा जब भटक जाती है, कल्पना करो वो ऐसी स्थिति है यहां इस संसार में किसी के पास घर न हो, पीने को पानी न हो, पैसे न हो, खाने को अन्न न हो, पहनने को वस्त्र न हो, क्या होगा उसका? उसको मधुबन से भेज दिया जाओ, वो कहां जाए? घर नहीं, पैसा नहीं, मकान दुकान कुछ नहीं, कपड़े नहीं, ये स्थिति होती है भटकने वालों की। तो मुझे याद आती रही इन दिनों वो बाबा की बात बहुत ज्यादा कि ऐसा पुरुषार्थ करो अंत में मेरे सिवाय कुछ याद ना आए, और जो बाबा के साथ चलेंगे वो धर्मराज को टाटा करते हुए जाएंगे, और जो रुक जाएंगे वो सजा भोगेंगे। तो मुझे ऐसा बिल्कुल क्लियर ये ज्ञान है, आप सब भी इसे आराम से समझ सकते हैं। एक साथ मृत्यु हो गई बहुत लोगों की, भूकंप हो गए, लाखों मर गए एक साथ, उनको जन्म नहीं मिला। अब वो आत्माएं यही भटकती रहेंगी, उनमें ज्ञानी भी होंगे और अज्ञानी भी, और ये काल उनके लिए धर्मराजपुरी होगा। और जिन्होंने योग का बहुत अच्छा अभ्यास किया होगा सीधे उन्हें लगेगा बाबा साथ लेके जा रहा है, सीधे घर पहुंचेंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है समय की नाजुकता को जानते हुए हम अपने पुरुषार्थ की गति को बढ़ाएं, और मधुबन में आकर आप सभी व्यर्थ से मुक्त होने का प्लान बना लें। यहां इसके लिए प्लानिंग की जरूरत है, क्योंकि व्यर्थ बहुत चलता है आत्माओं में, इतना कि जो शक्तियां जमा की होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, और खाता कहीं कहीं तो निगेटिव में चला जाता है। सभी अच्छी तरह समझ लें, यदि हम परेशान हैं, यदि हम चिंताओं में समय बिताते हैं, यदि हम व्यर्थ की बातों में अपने अनमोल समय को नष्ट करते हैं, हमारा खाता निगेटिव माइनस में जा रहा है, कमाई तो छोड़ो। इसलिए स्वयं को ज्ञान और योग से मजबूत करने का समय है। एकांत लेकर चिंतन करेंगे, लिख लो चिंतन जो लिख रहे हैं, और रोज करना कुछ दिन। क्या हम वही कर रहे हैं जो हमें संगम युग पर करना चाहिए? गहनता से चिंतन करेंगे। ये समय दोबारा नहीं आएगा, और पूरा हो रहा है। देखो संगम के 20 साल बचे हैं, ये 20 साल विनाश और प्रकृति को शांत करने में जाएंगे। पुरुषार्थ का खेल समाप्त होने के किनारे पर है। अब भी जिसने न किया वो रह जाएंगे। 3-4 साल सुंदर और हैं हमारे हाथ में, अगर हम इनका सदुपयोग करना चाहें तो अपनी स्थिति को जरा स्ट्रांग कर लें। संकल्प लिखें, क्या हम वही कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते उसे भूल जाएं, जो कर सकते हैं, जो पॉसिबल है, क्या हम उतना कर रहे हैं? मुझे संगम युग पर और क्या क्या कर लेना चाहिए? ये चिंतन करेंगे, मेरा जीवन बहुत मूल्यवान है, हम इसे सफल कर रहे हैं, भगवान मिला है जो ऋषियों को नहीं मिला, शंकराचार्यों को नहीं मिला, विद्वान और तपस्वियों को नहीं मिला, वो किसे मिला है? हमें मिला है। क्या हम उसका सुख प्राप्त कर रहे हैं? गहन चिंतन रोज अपने से करेंगे, या भगवान को मिलने के बाद भी उसे छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं? कड़वी बात है थोड़ी, कर रहे हैं, कई छोड़ रहे हैं। चिंतन करेंगे अच्छे से, अच्छा क्या किया जा सकता है। हम महान आत्माएं, रोज अपने को याद दिलाना, मैं महान आत्मा हूं, मुझे महान कार्य ही करने हैं आने वाले समय में। खतरनाक समय तेजी से आता जा रहा है, आएगा नहीं, आ गया है। कैंसर घर घर में पहुंचने वाला है, डिप्रेशन, नींद न आना, समस्याएं उग्र रूप लेती जा रही हैं, मानसिक रोग सुनामी की तरह बढ़ रहे हैं। बढ़ इसलिए रहे हैं, सबको कर्मों का हिसाब देना है। पाप बड़े आनंद पूर्वक किए हैं, अब उनकी सजाओं का समय आ गया है। इसलिए अच्छे अच्छे युवक मानसिक रोग से पीड़ित होते जा रहे हैं और विकारों ने ब्रेन की शक्ति को नष्ट कर डाला है। सहन शक्ति रही नहीं, ब्रेन में ताकत नहीं बची है कुछ चीजों को ठीक करने की। इसलिए जो बुद्धिमान हैं, उन्हें अब सोचना है हम इस समय को सफल करें। कहीं भी आपके जीवन में उलझन हो, निकलना सीखना है उससे। उलझने हैं परिवारों में, चिंताएं भी हैं, उससे कोई मना नहीं कर सकता। उनसे बाहर निकलना है, उसके लिए ज्ञान का बल अपने पास रखना है। मैं एक बात आपको याद दिलाऊं, सहज पुरुषार्थ के लिए है, जो टॉपिक है उसी से जुड़ी हुई है ये सब बातें। बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह बन जाओ। आगे क्या बोला था किसी को याद है? इसके लिए क्या विधि बताई थी? हाँ ठीक बोल रहे, बोलो। ठीक बोला, मेरे को तेरे में बदल दो फिकर। फिकर बाप को देखकर क्या ले लो? फकुर नशा ले लो और तुम बन जाओ बेफिक्र बादशाह। अब इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए तो चिंताएं खत्म होती जाएंगी। मैं चिंता करूं इसे कितना अच्छा है, मेरी चिंता भगवान करे। लेकिन इसके लिए ज्ञान का बल, बहुत अच्छा विश्वास चाहिए। कमजोर हैं तो बाबा को देते देते परेशान रहेंगे कि दो दिन हो गए बाबा ने तो कुछ किया ही नहीं, तीन दिन हो गए अब तक भी कुछ नहीं हुआ, परेशान हो जाएंगे। इसलिए अपनी स्थिति को ठीक रखना अपने हाथ में। जिसने इस समय ये कला सीख ली कि अपनी स्थिति को ठीक रखना अपने हाथ में, उसका आगे का समय बहुत सुंदर बीतेगा। और जो छोटी छोटी बातों में विचलित हो जाएंगे, जिनको परेशान और दुखी होने की आदत पड़ जाएगी, वो दुख भयानक हो जाएगा। एक चीज और मैं आप सबको सावधान करना चाहता हूं, ये मेरा कर्तव्य है जो मुझे पता है, जो सबको नहीं पता है, और वो ये है शॉर्ट में, जैसे बाबा ने जब सेवाएं शुरू की 1950 उससे पहले यज्ञ बैगरी पाठ से गुजरा था। वो बैगरी पाठ क्यों था पता है आपको? है परीक्षा लेने के लिए, ताकि कच्चे हट जाएं। कच्चे स्थापना नहीं कर सकते, वो विघन डाल देंगे, वो हटे जाएं, चले जाएं, स्ट्रांग आत्माएं रह जाएं। तो 100 रह गए, उनसे सेवा आगे बढ़ी। भगवान चाहता तो यज्ञ में सोने की बरसात न करा देता उसके लिए, और उसके बच्चे भूखे बैठे हो ये लोग सोच भी नहीं सकते ऐसा कैसे हो गया। वो चाहे तो हीरो की बरसात करा दे, अभी अभी सेकंड में संकल्प करेगा हीरे बरसने लगेंगे। पर उसे परीक्षाएं लेनी थी, पक्का करना था। अब फिर से प्रत्यक्षता और जय जयकार होने से पहले सबको परीक्षाओं के दौर से गुजरना है ये 3-4 साल 2020 तक जरूर। और वो परीक्षाएं कैसे होंगी? जिसमें कच्चे जाएंगे। आप ये ना सोच लो मैं अशुभ बोल रहा हूं, कोई कहे ये क्या बोलने लगे। टीचर रोज आती है मेरे पास, आज भी एक टीचर आई है हमारे यहाँ, भाई जी हमारी क्लास रोज मुरली सुनने वालों की 300 थी, 25 तो ऊपर चले गए, 250 तो बच्चे। मैंने कहा तो उनको तो जाना ही था भाई, उसमें क्या दिक्कत है, जाएं बेचारे, नया जन्म लेंगे, बूढ़े हो गए। कहा पर क्लास बहुत छोटी रह गई है, चिंता तो होती है बहनों। तो ये परीक्षाओं का दौर चल रहा है, निश्चय की परीक्षा। एक अव्यक्त बाबा के पाठ को देखकर बहुत उपसन से आते हैं, बोलते नहीं है बेचारे, चुपचाप रहते हैं, पर सोचते हैं कुछ गड़बड़ तो हो रही है भाई। रोहित भाई आपके पास आते होंगे, कई तो ये कहते हैं भगवान को क्या हो गया आजकल, इतने अच्छे थे हमारे बाबा, मुरली सुना के लहरों में आनंद में लहराते थे, ये क्या हो गया। कई संशय, कभी बड़ी आवाज हो जाती है, कभी छोटी, कभी डायरेक्ट आ जाते हैं, कभी ध्यान में, कभी रिपीट करते हैं, कभी और कुछ गड़बड़, संशय आ रहा है। लेकिन हर चीज का आंसर है मेरे पास तो है, कुछ भी बिना कारण नहीं हो रहा है, भगवान को कुछ नहीं हुआ, वो तो वही है, कुछ और गड़बड़ हो रही है। इससे बहुतों को संशय उठ रहे हैं, और जिस बात के लिए मैंने आपको ये बात सुनानी शुरू की वो सुन लें। अब वो समय आ गया है, कर्मों के हिसाब किताब तो देने ही है, लेकिन बाबा जिसके लिए हमें सावधान करते थे, कभी लोग आज उन चीजों को भूल गए हैं। एक समय ऐसा आएगा अंत का, सभी के दबे हुए संस्कार विकार इमर्ज होने लगेंगे, वो समय चल रहा है, जिसमें इम्प्योरिटी थोड़ी भी है वो उसे ऊपर निकल के मार डालेगी, जिसमें क्रोध था उनको जीता नहीं वो भयानक रूप ले लेगा, लोभ अब ले जाएगा दुनिया में, मोह बहुत दुखी करेगा। एक का केस कल ही आया, बहुत समय से सेंटर में रहने वाला एक भाई जो बहुत अच्छा पुरुषार्थी, हमारे यहां भी सेवा में बहुत आता था, अचानक क्रोध जागृत हो गया उसका, और बड़ी बहनों को मारने के लिए तैयार रहता है। कहा हम तो डर जाते हैं, कहा अभी तो आने से पहले दरवाजा ही बंद कर लिए हम दोनों ने, अंदर चले गए कमरे में। मैं तो समझ गया साइकेट्रिक पेशेंट होता जा रहा है वो, पर उसे किसी डॉक्टर ने कहा कि इसको वही एक साइकेट्रिक माना जो मनोरोग चिकित्सक होते हैं मन के रोगों के, उसको दिखा तो वो और गर्म हो गया, मैं पागल हूं क्या समझाया तुमने मुझे, तुम जाओ वहां, बढ़ रहा है ये सब। तीन तरीके होंगे विकर्म विनाश होने के, अब से जो चालू हो गए हैं, नींद न आना, यहां के रोग मानसिक डिप्रेशन, एक और जल्दी जल्दी मृत्यु, जल्दी जल्दी जन्म, अब ये भी सब हो रहा है। बहुत बच्चे ऐसे पैदा हो रहे हैं, मेरे पास तो लाती रहती हैं माताएं अपने बच्चों को पोतरों को, 8 साल का हो गया, ना बोलता ना ठीक से चलता ना सुनता, बुद्धि भी वैसी है जैसी पैदा हुआ था, अब तक बढ़ी ही नहीं है, ये सजाएं चालू हैं। तो बाबा को ऐसे महान योगियों की जरूरत है आप सबके बीच से, जो इन सभी आत्माओं को सकास देकर मदद कर सकें। रात को सोएंगे नहीं लोग, किसे याद करेंगे, बोलो किसे याद करेंगे, नींद नहीं आएगी, कुछ तो करेंगे ना, अपने इस देव देवियों को। और वो कहां बैठे हैं, कहां है वो, बलसाड में या ऑल में, अब कहां है, तो आप उन्हें सकास देकर सुलाएंगे। माताओं को रोज का अनुभव है, बच्चे सो नहीं रहे, रो रहे हैं, तो सुला के ही जाती है ना, हाथ से प्यार के वाइब्रेशन सुने जाते हैं और बच्चे रिलैक्स होके सो जाते हैं। पता माताओं को ऐसे करती हैं तो क्या जाता है, हाथ से प्यार की तरंगें जो बच्चों को रिलैक्स करके सुला देती हैं। ऐसे कुछ योगी चाहिए जो एक स्थान पर बैठकर सबको सुला सके, बहुत अच्छे योग साधना की जरूरत है इसके लिए, हर एक के बस का नहीं है। बहुत अच्छा योग, लंबे समय की प्योरिटी, लंबे समय का स्वमान का अभ्यास, तीन चीजें बहुत चाहिए। तो सहज पुरुषार्थ के लिए अब मैं आपके सामने 3-4-5 बातें रखता हूं। पहले तो सहज जीवन जीना सीखना चाहिए। सहज जीवन, इजी लाइफ, इजी गोइंग नेचर सबको सीखनी है। कई मनुष्य कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, बहनों को रोज रात दिन में रात को भोजन बनाना है, एंजॉय करो इसको, आनंद लो, ये करना ये करना ये करना ये करना, इसकी जरूरत नहीं, भोजन रोज बनना है। सहज भाव से बनाओ, आपके 3-4 घंटे रोज योग तपस्या के घंटे हो सकते हैं, बनाओ इसे, प्लान कर लो 4 घंटे रोज तपस्या का समय, अच्छे अभ्यास करते हुए, गीत सुनते हुए, अच्छी स्मृतियों में रहते हुए, बाबा को याद करते हुए भोजन बनाओ। हर कर्म को एंजॉय करने की कला सीखनी है भाई, सभी प्रैक्टिस करेंगे, जो भी काम आपको करने हैं उसको एंजॉय करो। आपको बाइक से अपने घर से ऑफिस जाना है, आपको आधा घंटा लगता है, आनंद लो उसका, उसमें अच्छे अभ्यास किए जा सकते हैं। केवल बाइक चलाना है ये नहीं, 2 ही मिनट लेट होगी, ज्यादा नहीं होगा, आनंद लो। सहज जीवन बहुत अच्छा टॉपिक है, सरल स्वभाव, भागदौड़ का जीवन नहीं। क्यों भागदौड़ का लगता है मनुष्य को जीवन, बोलो क्यों? ज्यादा काम नहीं है किसी के पास? अब ये भूल जाए कोई कहता हो तो मैं बहुत बिजी हूं, टाइम ही नहीं है, बहुत फास्ट लाइफ है। लाइफ फास्ट नहीं है, संकल्प फास्ट है। संकल्प सहज हो जाए, जीवन सहज, 2 घंटे का काम 1 घंटे में पूरा। इसलिए संकल्पों की स्पीड को सभी को ठीक करना है। अमृत वेला और योग, वो योग और मुरली, उठते हैं अमृत वेले, भाई लोग जो उठते हैं हाथ उठाओ जरा, बहने तो सब हाथ उठा रहे, रोहित भाई ऐसा है क्या? है सचमुच? यहां उठते हैं वहां भी? मैं वहां का पूछ रहा हूं, यहां का नहीं है। बारडोली, चलो बारडोली वाले बता दो, और कहां कहां के? सूरत, इस बार मिला सूरत और बारडोली, तो सूरत वालों की सूरत सवेरे बाबा को दिखती है या नहीं? दिखती है? मुझे नहीं लग रहा है। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, सवेरे उठकर उस समय का आनंद लेते हैं या ढीला ढाला बीत जाता है? ये सीख लेना है, बस आगे नहीं पूछूंगा मैं, मुझे पता है। ये सीख लेना है सवेरे का समय, ये नहीं 4 से 4:45 हुआ योग पूरा हो गया पापा को छुट्टी, नहीं, 8 बजे तक के टाइम को पूरा सफल करना है। आप सभी इतना कर लो, 4 से 8 के समय को सफल करना है, और भोजन बनाने के समय को तपस्या बनाना है, बस देखो जीवन 4 से 8 के समय को अलग अलग अभ्यास, उठते ही स्वयं को चार्ज करेंगे, चार्ज, सुंदर संकल्पों से ब्रेन को फ्रेश करो, मन बाबा के प्यार में भर जाए, जागृति आ जाए, हमें जग जाएं हम, सोने के उठने के बाद भी कई सोए रहते हैं, ये नींद नहीं, विस्मृति की नींद। और अगर विस्मृति की नींद है तो ये नींद उससे भी भारी है, ढीला कर देती है। सवेरे उठते देखो ऐसे शुरू करना है, पहले तो बाबा को गुड मॉर्निंग, कहां से करेंगे, यहीं से करेंगे या उसके पास जाके करेंगे? बोलो भाई लोग नहीं उठते ही तो करेंगे, पर कहां से? मैं यहां तुम वहां दूर से, आपके बच्चे कमरे से ही आपको नमस्ते गुड मॉर्निंग मम कह दें कैसा लगेगा? या वो आपके पास आते हैं और आप क्या करते हैं तब? बोलो क्या करते हैं? वही बाबा करेगा। सिर पे हाथ रखेंगे, कुछ ब्लेसिंग देंगे, बाबा को गुड मॉर्निंग करो, सूक्ष्म लोक में जाकर एक सेकंड में हम वहां हैं और बाबा सामने, और बाबा को गुड मॉर्निंग किया और बाबा ने अपना वरदानी हाथ सिर पर रख कहा बच्चे सुखी भव। रोज कहेगा कुछ कुछ, श्रेष्ठ योगी भव। उसके बाद फिर भले नीचे से करना, बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको बारंबार शुक्रिया, 5 बार। आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको कोटि कोटि बार शुक्रिया। आपने मुझे सुंदर जीवन दिया, सत्य ज्ञान दिया, बहुत अच्छी बुद्धि दी, अच्छा परिवार दिया, आपको बारंबार शुक्रिया। जो जो आपको मिला उसके लिए शुक्रिया कर देना। ब्रह्मा भोजन दिया, जो कुछ आप समझते हैं ये दिया उसने। यहां से शुरू करना अपनी सवेरे की दिनचर्या को, इसको अपनी नेचर बना लो। रात को भी आंख खुल जाए ना 1 बजे तब भी कर देना, और कुछ सुंदर संकल्प करना। पहला संकल्प जो सबसे सुंदर है संसार में, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, 5-5 बार अंदर चला जाए ये। कभी भी अपने कम भाग्य को याद न करना, हम सब बहुत भाग्यवान हैं या नहीं? जिन्हें भगवान मिलता हो उठते ही, कोई सुन ले संसार में कि कुछ ऐसे महान पुरुष हैं संसार में, जब वो आंख खोलते हैं भगवान मिलता है, कैसा लगेगा उसे? कहेगा उनके दर्शन करके आऊं, कौन है वो सूरत में ऐसे लोग? सारा सूरत आपकी ओर भाग जाएगा, है इतना बड़ा मकान, सब आएंगे, ये समय आ रहा है। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, मैं बहुत सुखी हूं, बाबा आपको पाकर मैं बहुत सुखी हुआ हूं, सच्चे मन से सब सुख दे दिया तुमने। भूल से भी सवेरे न कह देना सुख दो, दुख है बाबा थोड़ा थोड़ा है, दुख ले लो, वो बाद में करना, रात का काम है वो, दुख हरो। सवेरे मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत धनवान हूं। अब पूछ लो ये सच्चे मन से निकलेगा या नहीं? मैं बहुत, कौन से हैं धन हमारे पास? और खजाने, आपको इस जरा सहज रहेगा, खजाने, खुशी का खजाना, दुआओं का खजाना, संकल्पों का खजाना, जो आपने बोले वही भी, ये बहुत बड़े खजाने हैं। संसार में खुशी और प्रेम नष्ट होता जा रहा है। मैं बहुत धनवान हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, 4th संकल्प। मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मेरा जीवन निर्विघ्न है। बहुत विघ्न है बाबा सवेरे सवेरे सुनाने लगे उसे, कहेगा तुमने ही तो किया, अभी विघ्नोद विघ्न मेरे पास थोड़ा ही आएंगे, तुम्हारे पास आएंगे, मेरा जीवन निर्विघ्न है, मैं विघ्न विनाशक हूँ, मैं विजय रतन हूँ, माया पर मेरी विजय निश्चित है। 5-7 मिनट लगा दो रोज सवेरे उठते, भले योग चल रहा हो आप ये करो, लेकिन योग से पहले ही कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, योग बहुत अच्छा लगेगा फिर। आंख खुलते ही ये नहीं सोचना स्नान कर लें, तैयार हो जाएं फिर करेंगे, इतने में तो बहुत सारे संकल्प चल जाएंगे। ये इसलिए है कि सवेरे हमारा सबकॉन्शियस माइंड अंतर मन जगा रहता है, जो संकल्प उसमें आप देंगे वही होगा। बस मैं श्रेष्ठ योगी हूँ, एकाग्र चित्त हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, एक लिस्ट बना लो, ये सब याद करना सवेरे। आंख खुल रही है और आधी नींद में ही सोच लिया। सोचते हैं कई, क्या सोचते हैं, योग तो लगता ही नहीं, उठ के क्या करेंगे, सो जाओ, दिन में बहुत काम है आज। तो आंख खुलते ही सोच लिया योग लगता नहीं है, पूरा हो गया, फिर नहीं लगेगा। मैं श्रेष्ठ योगी हूँ, आंख खुली आधी नींद में ही भगवान से मिलना है मुझे, वो मेरी इंतजार कर रहा होगा, उठूं जल्दी मिलूं उससे। संकल्प कर दो ऐसे, उठते ही अपने को चार्ज करना है। और मुरली, मुरली का सुख बहुत बड़ा सुख है, भगवान रोज हमसे बातें करता है और हमें कुछ याद दिलाता है, उसके सामने बैठने से हमें वो याद आने लगेगा। आप ही मुरली पढ़ेंगे वो याद नहीं आएगा, सामने बैठकर। और अगर टीचर भी वैसा ही रस भर दे जैसे भगवान कुछ याद दिला रहा है, बच्चे तुम बहुत पवित्र थे, याद आ जाए, तुम तो ऐसे सुख शांति समृद्धि से भरपूर देवता थे, याद आ जाए। रोज याद आते 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 हम वही बन जाएंगे। इसको कहते हैं स्मृति स्वरूप स्थिति, पुरुषार्थ का सबसे सहज तरीका, स्मृति स्वरूप। इस पर बहुत अच्छी चर्चा होने की जरूरत है मुझे, मैं आपको सुना दूं। इसी हॉल में अव्यक्त बाबा आए थे और उन दिनों ऐसा होता था, आजकल जैसे बाबा का पाठ नहीं था, सिंपल यहाँ आए, थोड़े से बैठे हैं हम, 100-150 बैठे हैं यहाँ, बाबा की मुरली चली, भोग रोज हर बार नहीं लगता था, भोग अंत में जब सीजन पूरा हो जाता था, एक बार अंत में तो बाबा को जूस दिया जाता था पीने के लिए, मुरली के बाद बाबा को जूस दिया। पास में बैठी थी शील इंदिरा दादी, आप जानते हो कई, बॉम्बे में रहती थी पुरानी दादी, बड़ी दीदी की बहन, बड़ी मजाकिया भी थी, बाबा से बड़ी खुली हली मिली जुली थी बचपन से ही। तो बाबा ने जूस हाथ में लिया और दृष्टि दी, उसने फट से पूछ लिया, बाबा आप किसे याद कर रहे हो? अब और तो कोई पूछ नहीं सकता। वो मजाकिया थी, बाबा को बहुत बहलाया करती थी कहानियां सुना के, ऐसी वैसी बातें अच्छी अच्छी सुना के। तो बाबा ने गिलास तो हटाया और कहा, अब शिव बाबा ने उत्तर दिया, जूस पी रहे थे ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा ने उत्तर दिया, तब से हमें एक बहुत सुंदर लाइट प्राप्त हो गई, इसे अब किसी को याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये स्मृति स्वरूप हो चुका है। तो हमें लगा स्मृति स्वरूप होना माना संपूर्णता है। उन्हीं दिनों बाबा की मुरली में हमने ये भी सुना था, स्वमान में संपूर्ण रूप से स्थित हो जाना ही संपूर्णता है। तो स्वमान और स्मृति एक ही चीज है। तो मुझे याद आया, तब हम गीता पढ़ते थे बहुत पहले, ज्ञान से पहले आए थे पढ़ते पढ़ते, तो अर्जुन को मोह पैदा हुआ, अर्जुन लड़ने के लिए तैयार नहीं है, श्री कृष्ण से याद दिला रहे, वो गीता ज्ञान किसने दिया वो अलग बात। तो पहले आत्मा का ज्ञान दिया गया उसको, तुम आत्मा हो, जिनको तुम मारना चाहते हो शरीर मरेंगे, आत्मा नहीं मरेगी, ये सब आत्माएं हैं, ये पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे, ये मरते नहीं हैं। बहुत डिटेल बताया, योग का बताया, अर्जुन का मोहनाश नहीं हो रहा। फिर क्या किया, अपना विराट स्वरूप दिखाया और उसमें दिखाया मैं महाकाल हूँ। महाकाल ने मुंह खोला हुआ है, बड़ा आग जल रही है और अनेक महारथी पांडव सेना और कौरव सेना के काल के मुंह में जा रहे हैं। अर्जुन ने कहा ये मैं नहीं देख सकता, बंद करो। बताया मैं महाकाल बनकर आया हूं सबके विनाश के लिए, तुम यदि इन्हें नहीं मारोगे तो भी ये मेरे द्वारा मारे जाएंगे, इसलिए तुम निमित्त बनकर यश प्राप्त करो। अर्जुन को जागृति आई, ये समय विनाश का है, महाकाल का है, मुझे अब युद्ध करना है। बाबा भी रोज हमें स्मृतियां दिलाते हैं, याद करो, ये सहज पुरुषार्थ का तरीका है। और आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, पांच स्वरूपों का अभ्यास स्मृतियां हैं। हम देवता थे, कैसे थे सामने ले आओ, चित्र देखो अपने देव स्वरूप का, उस पर चिंतन करो, जब हम ऐसे थे तो संपूर्ण पवित्र थे, सिर पर डबल ताज था, निर्विकारी, ईर्षा द्वेष दुख रोग शोक कुछ नहीं, सुख शांति समृद्धि संपूर्ण संपत्ति प्रकृति सुखदायी, कैसे थे हम, घर कैसे थे हमारे, कितने बड़े बड़े, आजकल देखो घरों की जगह नाप के ली जाती है, हाँ भाई 100 गज, ये 200 गज, 500 गज, 1000 गज का मिल गया तो बहुत बड़ा हो गया। सतयुग में कितना होगा आपका मकान बताओ, आप जितना तो एक एक का होगा तो मुश्किल हो जाएगा 9 लाख को, बहुत दूर दूर चला जाएगा, पर एक वर्ग किलोमीटर में तो एक एक का घर होगा ही छोटा, बाकी राजाओं के अलग है, वो तो बड़ा किला जैसा महल सुंदर होता है ना। अभी भी हमारे यहाँ अखबार में तुर्की के जो वहां राजा है ना सुल्तान, उसका वो महल का वर्णन किया गया, कितना जबरदस्त महल है कलयुग के अंत में, कहा उसके महल को देख के सद्दाम हुसैन भी शर्मा जाए, मतलब इतना ज्यादा धन लगाया हुआ है उसमें। तो सतयुग में राजाओं के महल जहां सोने की ईंटें होंगी, सुना था ना, अभी आजकल की ईंटें तो महंगी मिलती हैं, मिलती भी नहीं, वहां सोने की ईंटें भी फ्री मिलेंगी, और माताओं की साड़ियों में हीरे इतने जड़े होंगे, भारी नहीं होंगे, हल्के हल्के, कि उसकी कीमत अथाह होगी, अथा धन संपदा मिल रही, उसे याद करो। स्मृति दिलाई, जिनकी तुम मंदिरों में पूजा कर रहे हो, जिनकी लोग मंदिरों में पूजा कर रहे हो, वो तुम ही हो, बहुत बड़ी स्मृति है। हम जन्म जन्म सबकी कामनाएं पूर्ण करते आए, देते आए, हमारे दर्शनों से ही लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई, हमारे नाम से लोग क्या क्या करते आए, कैसी पवित्र झलक थी हमारे चेहरों पर, आज भी है ना देखो मंदिरों में, वो ये मैं हूं, संकल्प करो ये मैं हूं। कभी कभी मंदिर में जाके बैठ जाया करो मूर्ति की जगह, देखो सामने भक्त हैं बहुत सारे, मांगने आए हैं, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, देने की ताकत है, है? बड़ा भारी रहस्य है इसमें, बाबा ही हमारे द्वारा देता आया है। बाबा ने कहा, गीता में भी है, जो जो भक्त जिस जिस देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, मैं ही उनके द्वारा भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करता हूं। भक्ति में हमारे पास तो कुछ था नहीं, हम तो पत्थर के थे ना, बाबा हमारे द्वारा देता है, हम चैनल बन गए उसके, मीडियम अब भी बन जाएं। अब गहरी बात, अटेंशन दें, जिस मनुष्य के पास मैंपन बहुत है, उसने मानो इधर दीवार खड़ी कर दी है, बाबा की शक्तियां उसमें आकर फैलेंगी नहीं। और जिन्होंने अपने को निमित्त भाव से भर लिया है, मैंपन से मुक्त, वो बाबा के माध्यम बन जाते हैं, चैनल बन जाते हैं। इसलिए हमें अपने अहम पर बहुत ध्यान देना है। तो स्मृति ब्राह्मण जीवन की भी बहुत बड़ी स्मृतियां बाबा ने दिलाई हैं। कौन हो तुम, बहुत बड़ी बड़ी चीज कही है। कौन हो तुम, लिस्ट निकाल लिया करो, अपने से पूछा करो, कौन हूं मैं। सृष्टि चक्र के हीरो एक्टर जिन्होंने बड़े बड़े काम किए होंगे इतिहास में, इस संसार की सबसे शक्तिशाली आत्मा, सबकी पालना करने वाली पूर्वज आत्मा, पूर्वज विश्व कल्याणकारी, जिन्हें भगवान ने कहा तुम विश्व कल्याण करो, सृष्टि के आधार मूर्त, इस पर लोग कम ध्यान देते हैं, बहुत बड़ी चीज है ये। इस सृष्टि की अवस्था का आधार हमारी अवस्था है। कब इस सृष्टि में बहुत सुख शांति रहेगी और कब यहां दुख अशांति विकार गंदगी शोक सब हो जाएगा, ये हमारे ऊपर है। बहुत जिम्मेदार आत्माएं हैं हम, हमारा एक एक संकल्प एक एक कर्म जिम्मेदार है सृष्टि के लिए। हम पूर्वज हैं, पालना करने वाले। गहरी बात मैं सुनाता रहता हूं और रोज याद करनी चाहिए इसे। तुम इस सृष्टि के पूर्वज हो, सभी धर्मों की आत्माओं के पूर्वज हो। तुम्हारे पुण्य कर्मों का बल, ध्यान से सुन लेंगे, तुम्हारे पुण्य कर्मों का बल संसार की सभी आत्माओं को मिलता है, सब धर्मों को। सोच लो, इसलिए तुम्हें उसका फल भी पदम गुना मिल जाता है। सोच लो कितना पुण्य हमारा बनता है, कितनी महान जिम्मेदारियां हमारी हैं, हमारी प्योरिटी का बल, हमारी श्रेष्ठ स्थिति का बल, हमारे महान संकल्पों का बल, हमारे पुण्य कर्मों का बल सबको मिलता है। हम मददगार हैं सभी आत्माओं के, ये स्मृतियां हैं। बाबा रोज रोज हमें याद दिलाते दिलाते ऊंचा उठा रहे हैं। याद आ जाए बस, राक्षस पार्वती को उठाकर ले गए अपने महलों में, कमजोर हो गई है वो। महादेव के दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय उसे कहते हैं, आप हमें आदेश करो, हम अपनी मां को छुड़ा कर लाएंगे। महादेव कहता नहीं। क्या उत्तर दिया होगा, ये हम सबके लिए है, पार्वती है ना, हम सब भी। पार्वती को स्मृति आती जाती है और स्मृति आते आते वो बहुत समर्थवान बन जाएगी और उन सबको मार के वापिस आ जाएगी। जैसी स्मृति वैसी समर्थि वैसी स्थिति, इसलिए इन स्मृतियों पर ध्यान देंगे। और ध्यान दिला दूं एक चीज पर, बहुत जरूरी है सभी के लिए। बाबा ने याद दिलाया है तुम कल्प कल्प के विजयी रत्न हो, तुमने इस माया को बार बार जीता है। कितनी बार जीता है अनगिनत कहने से कुछ मजा नहीं आता सुनने वालों को। मैं आपको एक संकल्प देता हूं और सोच के देखो, इस माया को हमने 10,000 बार जीता है, अब जीतना कैसा रहेगा, कैसा लगेगा अब जीतना, बोलो। 10,000 बार जीता हो कैसा लगेगा अब जीतना? बोल नहीं रहे भाई, खेल। और बाबा ने बहुत पावरफुल याद दिलाई बात, तुम माला के ऐसे मन के हो जिन्हें स्मरण करते करते भक्त भी समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। हमारे नाम की माला फेरते फेरते विघ्न खत्म कर देते हैं। हम कितने बड़े, कितने महान, कितने शक्तिशाली होंगे सब सोच लें। अपने को जगाओ रोज, 10 बातें लिख लेना ऐसी स्मृतियों की, रोज पढ़ना, आंतरिक जागृति आएगी, इनर अवेकनिंग कहते हैं इसे, जगेंगे अंदर से। जो ढीलापन हो जाता है, जो क्वेश्चन उठते हैं क्या करें, ये आ गया क्या न करें, माया भी ये तंग कर रही है कैसे इसे जीतें, तुरंत याद करना कल्प कल्प जीता है, हम ही तो संपूर्ण पावन बने हैं, फिर बन जाएंगे। 10,000 बार जीता है, 10,000 बार कहीं आप किसी रास्ते से गुजरो, आज वहां अंधेरा है, लाइट चली गई है, जा सकेंगे या नहीं? आपके पैरों को पता होगा कहां से मुड़ना, पैरों को पता होता है, पैर वहीं से मुड़ जाएंगे, संस्कार पड़ जाता है ना। 10,000 बार जीता है माया को, और भी ज्यादा 10 करोड़ बार, पर ज्यादा कहने से कुछ अच्छा सा नहीं लगता। 100 बार जीता है तो लगेगा वाह, किसी पहलवान ने दूसरे पहलवान को 100 बार हराया हो, फिर लड़ने आया हो, कहेगा आ जाओ कोई बात नहीं, आ जाओ आओ। ये स्मृतियां हैं, पसंद है? सवेरे उठते ही आप रोज ये काम करें, पुरुषार्थ सहज हो जाएगा, जीवन भी सहज हो जाएगा। एक और बात आपके सामने रखता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने घरों का माहौल बहुत अच्छा सब बनाएं। हालांकि कहीं कहीं मनुष्य सब महसूस करता है कि हमारे हाथ में नहीं है सब कुछ, हम अकेले माहौल बिगाड़ने वाले 10 लोग क्या करें, परंतु शक्तिशाली कौन है? अगरबत्ती शक्तिशाली होती है या बदबू? बोलो कौन शक्तिशाली होता है? एक अच्छी सी मोटी सी धूप बत्ती जला दो, धूप मिलती है ना आजकल बड़ी सुगंधित, थोड़ी देर में सारी बदबू समाप्त। घर में आप एक एक इस देवी और इस देव हैं, अपने इस स्वरूप में बैठो, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। रोज इस अभ्यास में अपने घर में बैठो, आपके घर का माहौल बदलता जाएगा, दूसरे लोग बदलते जाएंगे। और एक और छोटा सा अभ्यास, शांत में बैठकर 2 बार कर लेंगे दिन में कभी भी, सबको इस नजर से देखो, ये आत्माएं हैं, देवकुल की महान आत्माएं हैं, हमारे घर में सभी देव कुल की महान आत्मा, बस इतना ही, आधा मिनट लगा। और मैं हूं इष्ट देवी महान आत्मा, वाइब्रेशंस फैल जाएंगे, इसका असर परिवार पर बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा। समस्याओं के बारे में भी ज्यादा परेशान न हो, किसी को आदत हो छोटी बातों में टेंशन में आने की, छोटी बातों में बहुत चिंतित रहने की, परेशान रहने की, उससे जरा निकले। आदत होती है या नहीं? होती है। एक छोटी आयु की बहन माता मुझे फोन किया, मेरे को बहुत चिंता रहती है, किस चीज की? 2 बच्चे हैं, 6 साल का एक 8 साल का, मुझे चिंता रहती है इनका भविष्य पता नहीं कैसा होगा। और भी अच्छी बात कही उसने, माताओं को रहती है चिंता, किस किस को रहती है? मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, रहती है बहुतों को चिंता। और हंसी की बात सुना दो, वो कहती है मुझे चिंता रहती है मेरे मरने के बाद इनका क्या होगा। मैंने कहा तुम्हें किसने बता दिया तुम जल्दी मरने जा रही हो? कि नहीं बताया तो नहीं, मुझे चिंता रहती है। मैंने उनसे बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई, समझाया कि अभी तो तुम्हारे बच्चे बहुत छोटे हैं, कम से कम 20 साल के तो हों, फिर चिंता करना। और तुम अभी मरोगी नहीं, मैंने कहा अभी 50 साल और जियोगी, चिंता ना करो। खुश हो गई, अच्छा जियोगी? हाँ जियोगी। किस ज्योतिषी ने बता दिया था मैं मरने वाली हूँ, मेरे बाद बच्चों का क्या होगा? मनुष्य को चिंता करने की आदत, ज्ञान स्वरूप हो जाओ। सब अपना अपना भाग्य लेकर आए हैं, आज हम चले जाएं तो उन्हें कोई और संभालेगा, हो सकता है हमसे अच्छी पालना करने लगे, हो सकता है उनका भाग इतना सुंदर हो वो सबको संभालने लगे, उन्हें किसी उनको जरूरत ही ना पड़े किसी की। ये जो व्यर्थ की चिंता करने की आदत है और छोटी बात में टेंशन में आ जाना, इसे बचें सभी। अपनी नेचर को खुशनुमा और सरल बनाएं, और वो तभी होगा जब सवेरे से ये सुंदर संकल्प अपने मन में भरेंगे तो विचार महान होते जाएंगे और ये छोटी बातें हमारी खुशी को शांति को छीनेंगी नहीं। चिंतन करें अपने से, हमें तो सबकी चिंताओं को हरना है, हमें तो सबके दुखों का निवारण करना है, हमें ऐसा महान बनना है कि हमें देखकर सभी बाबा से जुड़ते चले जाएं। चिंतन बहुत जरूरी है, पर ये अच्छा चिंतन कौन कर सकते हैं बोलो? और ये अच्छा चिंतन कौन कर सकते हैं? कई माताएं कहती हैं हमसे तो चिंतन होता नहीं। जो व्यर्थ चिंतन से मुक्त हो वही सुंदर चिंतन का आनंद लेंगे। जो सारा दिन बातों में लगे रहते हैं उनकी ब्रेन की शक्तियां बातों में नष्ट हो जाती हैं, चिंतन नहीं होता है। जो परचिंतन में रहते हैं वो अच्छा चिंतन नहीं कर सकते। इसलिए आप सभी अपने अपने घरों में एक अव्यक्त मुरली रोज पढ़ो। जिनको अपने को ज्ञान का भंडार बनाना हो, भंडार, वो अव्यक्त मुरली पढ़ो। मैंने कई उन लोगों को राय दी जो रिटायर हो गए, और मैं से पूछा भाई अब रिटायर हो गए, हमारे पास कुछ काम नहीं, बच्चे बड़े हो गए हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, हम पूरी तरह फ्री। मैंने उन्हें कहा सेवा तो करना लेकिन रोज एक अव्यक्त मुरली पढ़ के उसके मुख्य पॉइंट्स लिखना। इतना सुंदर उनका जीवन हो गया है और महसूस करते हैं हम ज्ञान के भंडार बन गए, व्यर्थ खत्म हो गया, कहा टीवी देखने को मन भी नहीं करता है, इधर उधर जाएं किससे बात करें भाई टाइम पास नहीं हो रहा, जाएं बूढ़े लोगों को होता है ना, सीनियर सिटीजन का भी ग्रुप बन जाता है ना, फिर बगीचे में जाके बैठते हैं आपस में इधर उधर की बात करते हैं, कहा हमें इच्छा ही नहीं होती। जो भी आप में से अपने को ज्ञान का भंडार बनाना चाहते हो, सुना भाइयों ने, ज्ञान का भंडार, अव्यक्त मूल्यों जैसा ज्ञान, अब ये समझ लें सारे संसार का ज्ञान इकट्ठा कर लो, अव्यक्त मूल्यों का ज्ञान उस पर भी भारी पड़ेगा, बहुत गहरी नॉलेज उसमें है। तो हम सभी को बड़े बड़े कार्य करने हैं, आज से संकल्प ले लो, मैं महान आत्मा हूं, मेरा जन्म ही महान कार्यों के लिए हुआ है, मेरा ये जीवन साधारणता में न बीत जाए, जैसे और मनुष्य अपना जीवन बिता रहे हैं वैसे मुझे नहीं बिताना है। संकल्प करो, इससे आप ईश्वरीय प्राप्तियों से भरपूर हो जाएंगे, शक्ति आ जाएगी आप में, बहुत अच्छे अनुभव रहेंगे, आप दूसरों की भी समस्याओं को हल कर सकेंगे। शक्ति है मास्टर सर्वशक्तिवान का बहुत अच्छा अभ्यास करना, बहुत सुंदर चमत्कारी किसकी अनुभव लोगों को हो रहे हैं। हमने तो शुरू किया था और किया था यहां से, बाबा ने कभी कहा था समस्याएं और कुछ नहीं कमजोर मन की रचना है, तो यहां से मुझे संकल्प हुआ अगर मन को शक्तिशाली बना दिया जाए तो समस्याएं नष्ट हो जाएंगी, और शक्तिशाली बनाने का सबसे अच्छा संकल्प मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। एक अनुभव सुना देता हूं, बस समय पूरा हो गया, पिछले हफ्ते 10 दिन का ही है। एक बहन ने फोन किया, भाई जी मेरी शादी हुई है। मैंने कहा तो हुई है तो मैं क्या करूं इसमें, ठीक है मैं थोड़ी हंसी कर लेता हूं कि नहीं भाई जी एक समस्या हो गई। शादी होके मैं घर में जो आई ससुराल में, मेरा पति सारी ज्वेलरी और पैसा लेकर भाग गया। 3 दिन हो गए हैं, उसके माँ बाप भी दुखी, मेरे भी दुखी, वो कहाँ चला गया, ज्वेलरी और पैसा सब लेके भाग गया है, कुछ पता नहीं कहाँ गया है। एकदम जो खुशी का माहौल था वो शोक में बदल गया तुरंत। मैंने कहा योग लगता है, कहा मैं योग तो सीखा है, मैं कन्या ही थी अभी भी हूं, शादी करा दी परिवार वालों ने। मैंने कहा अच्छा योग तो तुम्हारा डिस्टर्ब हो ही गया, ये परिस्थिति ऐसी है, तुम एक टाइम निश्चित करके 108 बार लिखो या याद करो बैठ के, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, और उसका आह्वान करो कि आ जाओ, और देखो उसका भाग्य कहो या बाबा की मदद या चमत्कार। 3 दिन हुए थे वो आ गए, ज्वेलरी और पैसे सब उसको वापिस कर दिए जो इम्पॉसिबल थे, लगाइए था कि इस सब के लिए तो भागा है, बहुत सारी ज्वेलरी दी थी इसके लिए ही तो भागा है, सब वापिस कर दिए, और आधे ही दिन में डिवोर्स फाइनल करके उसे घर भेज दिया। वो बड़ी खुश कि मैं डिवोर्स ही चाहती थी, सोचा था अब तो पता नहीं कितना समय लगेगा डिवोर्स में, ये तो आधे ही दिन में पूरा हो गया काम। अब माँ बाप को कहा मुझे शादी वादी नहीं चाहिए, मैं बाबा की, मैं सोचा यही अच्छा हुआ ना इसके लिए, कुछ बिगड़ा भी नहीं खेल। 1 हफ्ते का ही उनसे कर्म भोग था, वो चुकतु हो गया वापिस घर। तो ऐसी कहानियां भी बहुत चलती रहती हैं, ये मैं इसीलिए आपको सुनाई। मास्टर सर्व शक्तिवान के अभ्यास में सभी समस्याओं का हल समाया हुआ है। ओम शांति। अब इसी फीलिंग के साथ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान सब बैठेंगे, और सर्वशक्तिवान शिव बाबा सिर के ऊपर छत्र है इधर ही, सब अपने अपने सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान को देखें, छत्र छाया।
कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। उजड़े जहाँ चमन में फिर से फूल खिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। हो संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। तरसते नैन जिसको वो रोज दिखेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा। स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तू चिंता मत कर मैं हूं ना कह दिया है। ओ, जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तू चिंता मत कर मैं हूं ना कह दिया है। हो ज्योति बिंदु शिव मुझे साकार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा। स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था।